नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले अध्ययन में हमने देखा कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से हम सबों का उद्धार हुआ है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे आज्ञा पालन के द्वारा नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस अनुग्रह के द्वारा किस रीति से परमेश्वर हमारी सहायता करता है। मित्रों, आप मेरे साथ रोमियो की पत्री 3 अध्याय निकाल लें और हम आज 25 पद से आगे बढ़ेंगे और इस समय हम पढ़ेंगे 25 और 26 पद को। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 25 और 26 पद लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। मित्रों, ध्यान दीजिए, लहू के कारण विश्वास करने से, यह लहू उसके जीवन का प्रतीक है। हम इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं कि लहू के बिना पाप मुक्ति नहीं है। यदि आप किसी की देह को छुरी से काट दें तो वह मर जाएगा, क्योंकि देह का जीवन लहू में है। ईश्वर ने अपनी जान दे दी। शमौन पत्रस के अनुसार लहू बहुत ही मूल्यवान है। ये 2 पद दुष्चार्य शब्दों से भरे हुए हैं, प्रायश्चित, धर्मी, छुटकारा। यद्यपि ये शब्द कठिन है, इनसे डरे नहीं, क्योंकि जब हम उन्हें अपने बौद्धिक स्तर पर लाते हैं तो वही पाते हैं जो कॉल्विन ने कहा कि वे धर्म विज्ञान की मज्जा हैं। सच है, कॉल्विन ने यह भी लिखा है कि संभवतः संपूर्ण बाइबल में एक भी अंश ऐसा नहीं है जो इससे अधिक गहराई में मसीह से परमेश्वर की धार्मिकता को व्यक्त करे। मेरे मित्रों, हम देखते हैं परमेश्वर ने ठहराया, परमेश्वर अकेला ही धार्मिकता का सृजनहार है और आज एकमात्र वही है जो उद्धार दिला सकता है। आप और मैं उद्धार नहीं दिला सकते, कलीसिया उद्धार नहीं दिला सकती। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने लिखा, जिसे हम 2 कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, जहां पर ये बातें लिखी हुई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। उसने यह किया, अब वह हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपता है। अतः पवित्र परमेश्वर आपसे और मुझसे जो कहता है कि हम करें, वह है कि उससे मेल कर लें। आपको परमेश्वर का दिल पिघलाने के लिए कुछ नहीं करना है। मेरे प्रियो, मेरा एक प्रचारक मित्र है जिसने वर्षों प्रचार किया है और वह श्रोताओं को रुलाना पसंद करता था। मैंने उससे पूछा, परमेश्वर का दिल पिघलाने के लिए आपको कितने आंसू बहाने की आवश्यकता पड़ती है? उसने कहा, ओह, ठड्डा ना कीजिए आप। मैंने कहा, मैं ठड्डा नहीं कर रहा हूं, ठड्डा तो आप कर रहे हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर का दिल पिघलाने के लिए वेदी पर आंसू बहाने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का दिल तो पिघल चुका है, अब आपको केवल उसके पास आना है। वह आपसे मेल करना चाहता है, वह आपसे संगति करना चाहता है। वह कहता है, तू परमेश्वर से मेल कर। मसीह दिया गया है, अर्थात वह ऊंचे पर उठाया जा चुका है, क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, प्रायश्चित ठहराया गया है। 2010 वर्ष पूर्व मसीह की ओर संकेत करता है, जब मसीह उद्धारक स्वरूप ऊंचा उठाया गया था। तो मित्रों, आपको याद होगा कि मंदिर का पर्दा दया आसन को ढांके हुए था, परंतु आज मसीह हमारा दया आसन है। दया आसन के बारे में इब्रानियों का लेखक कहता है कि उसके ऊपर महिमामय करूब छाया किए हुए थे। आप देखें इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 5 पद में, धर्मशास्त्र की मूल भाषा यूनानी का जो शब्द दया आसन के लिए काम में लिया गया है, वही शब्द यहाँ प्रायश्चित के लिए काम में आया है। इसका अर्थ यह हुआ कि मसीह हमारा प्रायश्चित अर्थात दया आसन है। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि लूका के सुसमाचार वृतांत में कर लेने वाला पुकार रहा था, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 13 पद में पाते हैं, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जी हाँ, उसे दया आसन की आवश्यकता थी। हे परमेश्वर, इस अभागे कर लेने वाले के लिए यदि कोई दया आसन हो कि वह आए। जी हाँ, उस समय यदि कोई यहूदी कर वसूल करने का ठेका ले लेता तो वह मंदिर और उसमें उपस्थित दया आसन से विवृत हो जाता था। पौलुस कहता है कि अब दया आसन प्रकट है, परमेश्वर ने मसीह को प्रायश्चित ठहराया जो उसके लहू में विश्वास करने से है। जी हाँ, यह जानना एक अद्भुत सौभाग्य है कि आज हमारे पास ऐसा अद्भुत परमेश्वर है जिसने बड़े आनंद और संतोष और हर्ष के साथ संसार के लिए दया आसन उपलब्ध कराया है। परमेश्वर अरुचि से आपका उद्धार नहीं करता, यदि आप आए तो वह आपको संपूर्ण मन से और बहुताय से उद्धार प्रदान करता है। जी हाँ, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि उद्धार पाने के बाद भी मुझे कुछ बातों की खोज करना है, प्रार्थना करना है और प्रतीक्षा करना है। मेरे मित्रों, मसीह को ग्रहण करके मुझे सब कुछ मिल गया। आप देखिए इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में, ओह वह कैसा भला था, उसने कुछ भी तो नहीं रोक रखा। जी हाँ, वह कहता है आ, वह आपको स्वीकार करेगा। योहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 37 पद में यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जी हाँ, सच तो यह है कि आप और मैं पवित्र परमेश्वर से अलग थे, परंतु अब मसीह के लहू द्वारा हमारे लिए परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग तैयार किया जा चुका है। जो पाप पहले किए गए उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मेरे मित्रों, ये उनके पापों का उल्लेख है जो मसीह के क्रूस से पहले थे। आपको स्मरण होगा कि पुराने नियम में वे मेमने की बलि चढ़ाते थे। आज आराधना में हम मेमने की बलि नहीं चढ़ाते हैं, आज ऐसा करना पाप है, परंतु मसीह के आगमन से पूर्व यह एक अनिवार्यता थी, व्यवस्था की अनिवार्यता थी। यह मेमना मसीह का प्रतीक था। पुराने नियम में भी वे विश्वास नहीं करते थे कि मेमना पाप मोचन करेगा। यदि आप हाबिल के समकालीन होते और जब उसने भेड़ की बलि दी थी तब उससे पूछते, हाबिल क्या इससे तुम्हारा पाप मोचन होगा, तो वह कहता नहीं। इस पर आप उससे पूछते, फिर तुम यह क्यों करते हो, वह कहता परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 4 पद में हमें कहा गया है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। दूसरे शब्दों में उसे ऐसा करने का प्रकाशन प्राप्त हुआ था, क्योंकि रोमियो की पत्र 10 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाबिल द्वारा विश्वास की यह बलि तब ही संभव थी जब परमेश्वर उससे कहता और परमेश्वर ने उससे कहा था। मेरे मित्र, आप संभवतः हाबिल से पूछते, तुम्हारे विचार में परमेश्वर के मन में क्या विशेष बात है, और मेरे विचार में वह कहता, परमेश्वर ने मेरी माता से कहा था कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है। हम उसके आगमन का समय तो नहीं जानते, परंतु जब तक वह न आए हमें यह करना है, क्योंकि हमें विश्वास से ही निकट आना है। अतः जो पाप पहले किए गए थे अर्थात मसीह की मृत्यु तक, तब तक परमेश्वर योग्यता के अनुसार उद्धार प्रदान कर रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बलिदान के कारण उद्धार नहीं दिया था। परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी बलि के आधार पर उद्धार प्रदान नहीं किया था। बलि तो केवल मसीह की ओर संकेत करती थी। मसीह ने आकर पूर्व काल के सब धर्मियों के पापों और उत्तर काल के सब विश्वासियों के पापों को हर लिया, अपने ऊपर ले लिया। अपनी धार्मिकता प्रकट करो, वरन इसी समय उसको धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जी हाँ, क्रूस की इस ओर हम बलि नहीं चढ़ाते हैं, हमें केवल मसीह में और उसके लहू में विश्वास करना है। मेरे मित्रों, अब हम देखते हैं कि पौलुस एक प्रश्न करता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। मेरे मित्रों, अब ध्यान दीजिए, यदि परमेश्वर योग्यता की अपेक्षा मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार प्रदान करता है तो गर्व करना कहाँ है? आपके और मेरे लिए डींग मारने का कारण कहाँ है? हम तो धर्म के रूढ़िवाद पर भी गर्व नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। पौलुस पूछता है, तो घमंड करना कहाँ रहा, अर्थात कहाँ गया? और वह स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है, उसकी तो जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण हो? क्या कर्मों की व्यवस्था से? जी नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण से। यहां व्यवस्था से अभिप्राय पुराने नियम की व्यवस्था से नहीं है, इसका अभिप्राय सिद्धांतों से है, आपके द्वारा किसी भी काम के करने का सिद्धांत या नियम। दूसरी बार जो व्यवस्था शब्द आया है वह पुराने नियम की व्यवस्था ही हटाकर विश्वास का सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मानव जाति को योग्यता के आधार पर नहीं अपितु हमारे लिए किए गए उसके काम पर विश्वास करने के आधार पर स्वीकार करता है। अतः इसमें घमंड का निराकरण है। हम रोमियो के पत्र 3 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। मेरे मित्रों, यह पौलुस के प्रवचनों का उपसंहार नहीं है और न ही सारांश है। वह घमंड के निराकरण के कारण को व्यक्त कर रहा है। घमंड का निराकरण क्यों हुआ? मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, और अब पौलुस अपनी बात हमारे मस्तिष्क में बैठा ही नहीं रहा है, वरन विवाद का अंत कर रहा है। तो सुनिए रोमियो के पत्र 3 अध्याय उसके 29 पद में, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। दूसरे शब्दों में, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है, अन्य जातियों का नहीं? जी हाँ, अन्य जातियों का भी है। अब सुनिए, वह निश्चय कराने वाला प्रबल विवाद है। पौलुस कहता है, यदि धार्मिकता व्यवस्था से है तो निस्संदेह परमेश्वर केवल यहूदियों का है, परंतु यदि धार्मिकता विश्वास से है तो वह यहूदियों और अन्य जातियों दोनों ही का परमेश्वर है। इस विवाद के तर्क पर ध्यान दीजिए। यदि यहूदी इस दशा पर बल देते हैं तो परमेश्वर दो है, एक यहूदियों का और एक अन्य जातियों का, परंतु यहूदी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। इसराइल को जो सबसे बड़ी बात कभी कही गई वह थी व्यवस्था विवरण के पुस्तक 6 अध्याय उसके 4 पद में, हे इसराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मसीह के आगमन से पूर्व के अन्य जाति संसार के लिए यह स्पष्ट एवं ऊंचे स्वर में एक संदेश था। हम रोमियो के पत्री 3 अध्याय के 30 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। मेरे मित्रों, दूसरे शब्दों में परमेश्वर एक ही है, और पुराने नियम में उसने मनुष्य को व्यवस्था दी, मनुष्य चूक गया, उसका पालन नहीं कर पाया। परमेश्वर ने व्यवस्था पालन के कारण उनका उद्धार नहीं किया था। उद्धार सदैव ही मनुष्य के विश्वास द्वारा दी गई बलि से था, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संकेत था। हम रोमियो के पत्र 3 अध्याय उसके 31 पद में आगे पढ़ते हैं, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। मेरे मित्रों, व्यवस्था का संदर्भ यहाँ मेरे विचार में दूसरा अर्थ रखता है। यह मूसा की व्यवस्था तक सीमित नहीं है और न ही यह अन्य किसी विधि विधान के संदर्भ में है। यह संपूर्ण पुराने नियम के प्रकाशन के संदर्भ में है। विश्वास ने व्यवस्था के कामों को निकम्मा तो ठहराया, परंतु क्या विश्वास के कारण पुराने नियम के प्रकाशन का निराकरण हो गया है? कदापि नहीं। अगले अध्याय में पौलुस पुराने नियम के दो पुरुषों अब्राहम और दाऊद के उदाहरण द्वारा सिद्ध करेगा कि ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये दो विशिष्ट जन व्यवस्था के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हुए थे। पहले तो यह कि अब्राहम व्यवस्था के आने से 400 वर्ष पूर्व रहा था और मर भी गया। वह तो व्यवस्था का पालन नहीं किया करता था, क्योंकि व्यवस्था उस समय नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने विश्वास के आधार पर उसे उद्धार प्रदान किया था। अब कोई पूछे दाऊद के बारे में क्या कहें? ईमानदारी से उत्तर देना, क्या दाऊद व्यवस्था पालन के द्वारा उद्धार पा सकता था? कदापि नहीं। पुराने नियम में स्पष्ट व्यक्त है कि दाऊद ने व्यवस्था का उल्लंघन किया था, परंतु परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। कैसे? विश्वास के द्वारा। दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था, वह परमेश्वर में विश्वास रखता था, वह पाप करने के उपरांत भी उसने परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया और विश्वास के द्वारा उसका भी उद्धार किया। मेरे प्रिय मित्रों, आज यदि हम पापी होने का अंगीकार करें और परमेश्वर के पास आ जाएं और मसीह यीशु में विश्वास करें, तो चाहे हम कुछ भी हों, जहां भी हों, जैसे भी हों, कैसे भी हों, जब भी हों, परमेश्वर हमारा उद्धार अवश्य करेगा, क्योंकि आज परमेश्वर ने मनुष्य को केवल एक ही आधार पर रखा है। उसका प्रश्न है, तू मेरे पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करता है? मेरा पुत्र जो तेरे लिए क्रूस पर मर गया। जी हाँ, पौलुस का तर्क है कि मनुष्य विश्वास द्वारा ही उद्धार पाता है, वह चाहे जो भी हो, जहां भी हो, जैसा भी हो। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के इस अध्ययन में हमने एक सिद्धांत देखा है। पौलुस स्पष्ट कहता है कि मनुष्य पापी है। इसके उपरांत वह कहता है कि परमेश्वर पापियों को धार्मिकता प्रदान करता है और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना स्पष्ट किया गया है। जी हाँ, अब वह इस सत्य को पुराने नियम के दो उदाहरणों द्वारा सिद्ध करता है, अब्राहम और दाऊद। पौलुस के युग में अब्राहम और दाऊद को इसराइल द्वारा बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था। इनकी जीवनियां पुराने नियम में हैं। अब्राहम इसराइल जाति का मूल पिता था और दाऊद उनका एक अति महान राजा था। पौलुस इन दो महापुरुषों के उदाहरण द्वारा अध्याय 3 के अपने विवाद को स्थापित करना चाहता है कि व्यवस्था और सुसमाचार में मेल एवं सहमति है। यद्यपि वे दो सर्वथा विपरीत तंत्र हैं, वे एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं और वे परस्पर अलग भी नहीं हैं। व्यवस्था के अधीन और व्यवस्था से पूर्व भी विश्वास परमेश्वर की एकमात्र अनिवार्यता थी। व्यवस्था से पूर्व अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था और दाऊद जो व्यवस्था के अधीन था, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का गुणगान करता है। पौलुस कोई नई एक विचित्र शिक्षा नहीं दे रहा है जो पुराने नियम को रद्द करके यहूदियों को जीवन के सागर में सुरक्षा नौका की अपेक्षा लंगर पकड़े छोड़ दे। पौलुस कहता है कि अब्राहम और दाऊद एक ही नाव में हैं। इसी नाव को वह अपने युग के मनुष्यों को दिखा रहा है। जी हाँ, विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना। व्यवस्था एक शिक्षक थी जो मनुष्य को हाथ पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाती थी। आइए हम देखते हैं अब्राहम के उदाहरण। प्रथम 5 पदों में हम देखेंगे कि अब्राहम विश्वास के कारण ही धर्मी गिना गया था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 4 उसके 1 पद को पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? ध्यान दीजिए, अब हम विशेषणों को और वाक्यांशों को पुनः व्यवस्थित करें कि पौलुस के विचार को भली भांति समझ पाएं। इसलिए हम क्या कहें कि अब्राहम, हमारे मूल पिता अब्राहम ने शरीर के अनुसार अर्थात मानवीय प्रयास द्वारा क्या पाया? इसलिए शब्द पौलुस के विवाद को अध्याय 3 से जोड़ता है। सुसमाचार घमंड का निराकरण करके व्यवस्था को सिद्ध करता है। अब्राहम और दाऊद पौलुस के इस विचार की पुष्टि करते हैं। पौलुस भाषा की प्रकृति के अनुसार वाक्यांशों का प्रयोग करता है। हम क्या कहें। ध्यान दीजिए, यहाँ वरन इस पत्री के अन्य विवादों में भी वह ऐसे ही वाक्यांशों का प्रयोग करता है। पहले भाग में पौलुस ने मनुष्य को पापी सिद्ध करने के लिए विवाद नहीं किया था, अतः हमने ऐसे वाक्यांश वहां नहीं देखे थे। इसी प्रकार पत्री के अंतिम भाग में जो व्यवहारात्मक है, ऐसे वाक्यांश नहीं पाए जाते हैं। अब्राहम हमारा मूल पिता, इससे प्रकट होता है कि इसराइल का आरंभ अब्राहम से है। मूल पिता एक विशेष अभिव्यक्ति है। अब्राहम का महत्व प्रकट होता है, वह काल क्रम में भी और महत्व में भी प्रथम था। वर्षों पूर्व मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उसे उसके एक यहूदी मित्र ने अपने युवा इब्रानी संस्था की संध्याकालीन सभा में प्रवचन सुनाने के लिए बुलाया। अतः वह उनके मध्य मूसा की व्यवस्था की महिमा की चर्चा की। मुझे यह जानकर अचंभा हुआ कि वे अपने वंशावली अब्राहम से जोड़ते हैं, वे अब्राहम से पीछे नहीं गए। उनके प्रश्नों से यह प्रकट हुआ कि अंत में उनसे पूछा, आप नूह और आदम को अपने वंशावली में नहीं गिनते हैं क्यों? उन्होंने हंसकर कहा, नहीं, हम अब्राहम पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि वह हमारा मूल पिता है। मेरे मित्रों, शरीर के अनुसार यह अब्राहम से संयुक्त हो सकता है या प्राप्त हुआ से भी संयुक्त हो सकता है। उसने देह के अनुसार क्या पाया? उसने यह पाया कि उसके शारीरिक प्रयासों से उसे घमंड करने की अपेक्षा लज्जा और उलझन हुई। अब्राहम के कर्म घमंड का कारण नहीं हुए। मुझे गलत न समझे, अब्राहम एक महापुरुष था, विशेष करके लूत के संबंध में। उसने सदोम और अमोरा के राजाओं से भेंट स्वीकार नहीं की थी, परंतु दूसरी ओर अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और मिस्र भागा था। मिस्री दासी हाजिरा और उससे संतानोत्पत्ति आदि अब्राहम के लिए घमंड का कारण नहीं थे। अब देखिए पौलुस इस कथन को कैसे विकसित करता है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। मेरे प्रियो, यदि अब्राहम कर्मों द्वारा अर्थात दैहिक प्रयासों से वह धर्मी ठहरता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। वह स्वयं घमंड कर सकता था, परंतु परमेश्वर के समक्ष नहीं। निसंदेह अब्राहम के भले कामों का परमेश्वर ने अनुमोदन किया था, परंतु विस्मय की बात तो यह है कि उसके कर्म उद्धार का आधार नहीं थे। वे उसके उद्धार और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का प्रगटीकरण थे। मेरे प्रियो, देखिए याकूब और पौलुस एक दूसरे की बात नहीं काट रहे हैं, जबकि याकूब ने कहा, याकूब के पत्री 2 अध्याय के 21 पद में, क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? यहाँ याकूब व्यवस्था पालन के विषय नहीं कह रहा है, क्योंकि अब्राहम व्यवस्था के अधीन नहीं था। उसके कर्म विश्वास के थे, व्यवस्था के नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करके अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा दिया था। क्या उसने वास्तव में ऐसा किया था? जी नहीं, परमेश्वर हस्तक्षेप करके उसे रोक दिया था। क्यों? क्योंकि नर बलि गलत थी। पौलुस और याकूब एक ही पद का संदर्भ देते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसका 6 पद, याकूब के पत्री 2 अध्याय उसका 23 पद, रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 3 पद। परंतु याकूब अब्राहम के जीवन के अंत तक का उल्लेख करता है, उस समय का जब अब्राहम ने इसहाक की बलि तैयार की। अब्राहम की स्थिति वही थी जो एक दुर्बल पापी की होती है। यह सच है कि उसके पास घमंड का कारण था, परंतु परमेश्वर के समक्ष नहीं, क्योंकि परमेश्वर देह के कामों को स्वीकार नहीं करता है। देह के काम उसकी पवित्रता के समक्ष नहीं आ सकते हैं। निश्चय ही अब्राहम के कर्म दुर्गंध युक्त थे। जी हाँ मेरे मित्रों, यहाँ 2 व्यक्तियों के उदाहरणों को हम देख रहे हैं, दाऊद और अब्राहम। यहाँ पर दोनों बातें हमें स्पष्ट करती हैं कि यह विश्वास के द्वारा ही दोनों धर्मी ठहराए गए, न कि उनके कर्मों के द्वारा। आज हम में से कई यह सोचते हैं कि हम अच्छे कामों के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। जी नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलि चढ़ा गया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें और हम अच्छे जीवन व्यतीत कर सकें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप इस अध्ययन पर अवश्य ही विचार करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानने का और उसे अपनाने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पापों से धोकर तूने मुझे, मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे, मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। तेरे द्वार पे तेरा ही दीदार करूं, तू मुझको पुकार ले, तेरे लिए मैं हरदम रहूं, तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन, तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें, आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें। यादों में तेरे हर पल रहूं, तेरे वचन में निभाता रहूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं मरूं, तेरे कदम पर हरदम चलूं। पापों से धोकर तूने मुझे, मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे, मुझको इतना प्यार दिया। कितना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम